नाना भागवत दास, पृष्ठ संख्या 55। यह सन 1910 ईस्वी है और यह नगर, इसका नाम है मिंटगुमरी। मिंटगुमरी, यह नगर कहाँ है रे बाबा? यह नगर इस समय पश्चिमी पाकिस्तान में है, लेकिन जब की बात दिखी जा रही है तब ब्रिटिश भारत में पंजाब में था। और यह सब क्या है? यह सब रामलीला की तैयारी है। कई दिन से अयोध्या जी से कोई रामलीला मंडली आई हुई है। इस मंडली ने पहले सरगोधा मंडी में लीलाएं दिखलाई थीं, जिससे वहां की हिंदी पंजाबी सिख जनता बहुत ही धन्य हुई थी। सरगोधा मंडी से इस रामलीला मंडली की प्रशंसाएं भक्त दर्शकों से सुनने के बाद मिंटगुमरी के भक्त दर्शनार्थियों ने वहां जाकर सारी मंडली के किराया, भोजन भर रकम पेशगी देकर 10 दिन में रामलीला दिखाने के लिए उत्साह, श्रद्धा और आग्रह से अपने यहाँ आमंत्रित किया था। ये लीलाधारी जब स्टेशन पर उतरे तभी मिंटगुमरी के दर्शनार्थियों की भीड़ सी लग गई थी। कितना सामान, 10 बड़े बड़े काठ के बक्से, 20 यों लोहे के ट्रंक, सब में रामलीला की आवश्यक वस्तुएं, लीला भूमि बनाने का बांस बल्ला, पटरे वगैरह सामान, समूह भोजन जिनमें सिद्ध हो सके ऐसे पीतल और तांबे के बड़े बड़े बर्तन, भांडे, टेंट, छोलदारियाँ। पृष्ठ संख्या 56। अयोध्यावासी ये लीलाधारी संख्या में 36 और 10 और 1 कुल मिलाकर 47 थे। 36 थे प्रौण पुरुष, अधिकतर साधु महात्माओं की ड्रेस में, 2-4 छैल चिकनियाँ भी जो दूर से ही नाटकी दिखते थे। 10 थे 10 से 18 की वय के बालक और युवक। सारी जमात में मुश्की रंग का आठों गांव कुमैत एक घोड़ा भी था। असल में नागा महंत भगवतदास महाराज की यह जमात थी पंजाब भ्रमण पर कटिबद्ध। जमात में विविध पदों के निशानधारी और बेनिशान नागा साधु थे। पंजाबी माताएं श्रद्धालु होती हैं। प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण है। यह सब मजे में जानकर ये साधु लीलाधारी उधर जाते थे और जाकर कभी पछताते नहीं थे। घोड़ा था महंत भगवत दास जी का। दाढ़ीधारी, छापा तिलकधारी, उजले वस्त्रधारी महंत जी आँखों पर चश्मा चढ़ाए, हाथ में बेंत की छोटी चंवरी लिए जब उस घोड़े पर सवारी करते थे, बड़ा चमत्कारी दृश्य उपस्थित हो जाता था। भागवत दास महंत एक आँख से काने थे। उन्हें बंगड़ वैरागी भगवत दास कानिया कहकर मंद माना करते थे, क्योंकि त्यागी वैरागी होकर भी भागवत दास पैसा जोड़े थे, कौड़ी पकड़। साधु जमात और रामलीला मंडली की मूर्तियों की सम्यक आर्थिक व्यवस्था महंत भागवत दास जी के हाथों में थी। स्थान पर महंत जी स्टील का एक मजबूत बक्स निकट रखते थे, जिसमें छोटे मोटे बैंक जितनी माया, रत्न, सुवर्ण, रजत मुद्राएं, रोजगारी, शेरों, चमचम प्रायः हमेशा रहा करती थी। जमात पर महंत जी का शासन कठोर था। जरा भी अनुशासनहीनता पर वह वैरागी या मंडली के एक्टर पर चंवरी चला बैठते थे। पृष्ठ संख्या 57। मिंटगुमरी के भक्तों ने रामलीला भूमि के निकट ही मंडी वालों के ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। माताएं बड़ी श्रद्धा से स्वरूपों तथा अन्य साधुओं के लिए दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, लस्सी, गुड़, बताशे, लड्डू, अन्न, वस्त्र पुष्कल दे जाती थीं। सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वगैरह बनने वाले बालकों को मंडली वाले अपनी भाषा में स्वरूप या स्वरूप कहा करते थे। श्रृंगार के साथ हम स्वरूपों को भक्तों के हाथों से दूध पिलवाने या प्रेमियों के घर भोजन करने के लिए महंत भगवत दास पंजाबी भक्तों से मोटी रकमें उतारते थे। भक्त लोग अक्सर साधुओं की जमात का भंडारा अपने घर करते। तब महंत के दल के नागा लोग सूरत के बने जरी के काम के खूबसूरत निशान, पताका, भाला, तलवार, तुरही से लैस, बारात बनाकर भक्त के दरवाजे पर जाते थे। बड़ी अभ्यर्थना, बड़ी पूजा, भक्त लोग इन साधुओं की करते थे। फिर पंगत बैठती थी, यानी जमात भोजन पाने बैठती। माल मलाई, मिठाइयाँ, मालपुए, तरह तरह की सब्जियाँ, जिन्हें साधु लोग साग नाम से भोजते थे, परसी जाती थी। फिर एक मुख्य साधु पंगत में टहल टहल कर जय बोलने बुलवाने लगता, यानी वह बोलता नाम दूसरे बोलते जय। चारों धामों की जय, सातों समुद्र की जय, सातों पुजारियों की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री सुग्रीव जी की जय, श्री अंगद जी की जय। यह जय घोष कभी कभी तो पूरे एक घंटे तक होता, जिसमें महंत के गुरु की तथा स्वयं महंत भगवान दास की जय भी पुकारी जाती थी। पृष्ठ संख्या 58। महंत की आज्ञा से जमात को सादर भोजन देने वाले भक्त के नाम की जय भी बुलवाई जाती। मालपुए ठंडे हो जाते, मलाई पर माखी भिनकने लगती, बढ़िया से बढ़िया बना हुआ सालन भी इस घंटे भर की जयबाजी में ठंडा पड़कर सचमुच साग बन जाता था। जय बोलते बोलते मारे थकावट और भूख के मुझे तो नींद आने लगती थी। किसी एक दिन की बात, उस दिन धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला होने वाली थी। मंडली वाले मेकअप रूम या ग्रीन रूम में श्रृंगार घर करते थे। श्रृंगारी होता था वहाँ का व्यवस्थापक, जिसके चार्ज में वस्त्र आभूषण, मुखैटे, दाढ़ी मूछे और मेकअप का आवश्यक सामान होता था। हम स्वरूपों के चेहरों पर मुर्दा शंख और लाल सिमरिख के रंग बकायदे चढ़ाने के बाद गालों और माथे पर चमकती डाक और सितारों से गोंद के सहारे वह श्रृंगार करता, फूल या मछली बनाता। इस श्रृंगार में कम समय नहीं लगता था। फिर हमारे मस्तक पर ऊन के काक पक्ष या जुल्फे अलकदार लटकाई जाती, कानों में कुंडल और मस्तक पर मुकुट किरीट चंद्रिका कसकर बांधी जाती। फिर नीचे और ऊपर के वस्त्र पहनाए जाते। साधारण लड़के को देवता की तरह सजाकर खड़ा कर देना श्रृंगारी का काम था। धनुष यज्ञ में मेरे बड़े भाई साहब दो दो काम किया करते थे। वह पहले तो राजा जनक के बंदीजन बनकर आते थे और हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी वगैरह कई भाषाओं में जानकी जी की प्रतिज्ञा बड़े रोब से सुनाते थे। फिर धनुष टूट जाने के बाद वह परशुराम जी बनकर आते थे। तुलसीदास जी के कथनानुसार रूपधर, अरुण नयन, भ्रिकुटि कुटील, गौर शरीर, भूति भली भ्रजा, भाल विशाल, त्रिपुंड विराजा, शीश जटा, सजहुँ चितवत मनहुँ रिसाने, खुले विशाल कंधे, एक कंधे पर दिव्य जनेऊ और माला और मृगछाला, कमर में मुनियों के वलकल वस्त्र, कंधों के पीछे दो दो तुड़ीर तरकश, हाथ में धनुष और बाण तथा वाम कंधे पर विख्यात परशु। पहले तो सहज ही वेश में अपने भाई को देखते ही मेरी रूह फना होती थी। तिस पर परशुराम का मेकअप, प्रायः उनके रंगमंच पर आते ही मेरी सिट्टी गुम हो जाती थी और अच्छी तरह याद किया हुआ संवाद भी सफाचट भूल जाया करता था। या लक्ष्मण का संवाद वीरतापूर्वक न कर केवल घिघिया करता था। पाठ भूलते ही परशुराम वेशधारी मेरा भाई स्टेज ही पर मुझे धमकाता कि चल अंदर, तेरा भुरकुस न बना दूं तो मेरा नाम नहीं। और पर्दा गिरते ही श्रृंगार में ही परशुराम जी लक्ष्मण जी को पीटने लगते। पर्दे के पीछे वाले उस परशुराम से लक्ष्मण की रक्षा राम ही नहीं, राम के बाप दशरथ भी नहीं कर सकते थे। खैर, इस धनुष यज्ञ में बड़े पेट वाले राजा का मजाकिया काम करने वाला एक्टर भी मेरा ही भाई था, मझला श्रीचरण पांडे, जो साधु कंठीधारी बनकर अब सियाराम दास हो गया था। जहाँ तक एक्टिंग का संबंध है, मेरा बड़ा भाई मझले से श्रेष्ठतर अदाकार था, लेकिन स्टेज पर प्रसिद्धि मझला ही विशेष पाता था, क्योंकि उसे नाचना, गाना, बजाना तथा जनता की चुटकियाँ लेना खासा आता था। पृष्ठ संख्या 60। नाचे गावे तोड़ तान तिसका दुनिया राखे बान, कहावत उन दिनों काफ़ी प्रचलित थी। घर में न सही, परदेश रामलीला मंडलियों में हम तीनों भाई साथ ही रहते और काफ़ी प्रेम से। घर में प्रेम इसलिए नहीं था कि खाना नहीं था, जब भूखे वजन न हो ही गोपाला कहावत है, तब भला भूखे प्रेम क्यों होता। रामलीला मंडली में दोनों ही अपनी अपनी स्वतंत्र कमाई कर लेते थे, ऊपर से बुनियादी राशन मंडली के पंचायती भंडारे से मिल जाता था। बुनियादी राशन यानी साग दाल चावल, बड़ी बड़ी रोटियां दोपहर को तथा घुइयां का साग और छोटी छोटी पूरियां रात के ब्यालू में। मेरे बड़े भाई की तरह शौकीन एक्टर अपना खाना बिस्तर या आसन पर लेते, जो महंत भगवत दास को बहुत बुरा लगता। वह चाहते कि जिसे भी भंडारे में खाना हो पंगत में बैठकर जय बोलने के बाद प्रसाद पाए, जो पंगत से चुकी उसका भाग भंडारे के प्रसाद में नहीं। कहावत मशहूर, डार का चूका बंदर, पात का चूका बैरागी। सो जो एक्टर पंगत में न शामिल होना चाहता, वह अपना प्रबंध अलग करता। महंत भागवत दास मेरे बड़े भाई की कद्र करते थे, क्योंकि वह उनका पत्र व्यवहार सुंदर अक्षरों उत्तम हिंदी में कर देते थे। फिर भी नागा कानिया महंत से दहशत सभी खाते थे, वह झक में आने पर अच्छे अक्षों पर हाथ छाड़ देते। कोई भी एक्टर भागवत दास के सामने जाने में एक बार झिझकता था। जमात के अधिकारियों में महंत जी के अलावा एक कुठारी जी थे, जिनके चार्ज में अन्न घृत बासन वसन आदि वस्तुएं होती थीं। उन्हें अधिकारी जी भी कहा जाता था। मंडली में भागवत दास के बाद अधिकारी जी ही का नाम था। वह साधुई कीते से पहनी हुई लुंगी और बगलबंदी धारण करते थे, टाट के जूते पहनते थे, ऊर्ध्वपुंड सहस्त्री माथे पर लगाते थे, जिसका फैलाव उनकी नासिका तक होता था। वह बहुत अच्छे रामायण भक्त भी थे। श्रृंगारी की तारीफ आप सुन ही चुके हैं। कुठारी श्रृंगारी के बाद भंडारी जी थे, जिसके हाथ में सारा भोजन भंडारा होता था। भंडारी अक्सर उसी नागा साधु को बनाया जाता था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर 100 सवा 100 मूर्तियों के पाने खाने योग्य प्रसाद अकेले तैयार करने की क्षमता होती थी। वैसे साधारणतः उसको सहायक साधु स्वयं सेवक सुलभ रहा करते थे। मंडली की हर मूर्ति का आवश्यक कर्तव्य माना जाता था भंडारी की हर तरह से सहायता करना, साग अमनिया करना, पुष्कल आटा गूंथना, ईंधन की लक्कड़ चीरना, जल जुटाना और सबके ऊपर भोजन के बड़े बड़े कड़े जले बर्तन मांजना चमाचम। मजे बासनों को कानिया भागवत दास आँख पर सोने के फ्रेम के चश्मे चढ़ा कर देखते, और जरा भी मलिनता या मल मिलते ही मांजने वाले वैरागी को चंवरी मढ़े बेंत से मारते मारते आदमी से टट्टू बना देते थे, टुटुरु टू। इन्हीं सब फजीहतों दिक्कतों से बचने के लिए मेरे भाई जैसे शौकीन अपना खाना अलग बनाते थे। इससे इनको प्याज लहसुन वगैरह की सुविधा भी मिल जाती थी, जो नागाओं के भंडारे में असंभव थी। ऐसे लोगों का जमात के विधान में स्वतंत्र आचरण महंत भागवत दास को भला नहीं लगता था, फिर भी नान वैरागियों को इतनी आज़ादी वह दे ही देते थे। पृष्ठ संख्या 62। महंत भागवत दास हिम्मत वाले, जीवट वाले साधु महात्मा थे। तभी तो सन 1910 ईस्वी में सीमांत प्रदेश के विख्यात शहर बन्नू में जाकर रामलीला दिखाने की जुरत की उन्होंने। उन दिनों बन्नू तक रेल लाइन तैयार नहीं हो पाई थी। मिंटगुमरी से कोहाट पहुँच, वहाँ से तांगों से शायद 2 दिन की यात्रा के बाद मंडली बन्नू पहुँची थी। तांगे दिन में चलते और सायंकाल किसी डेरा या खेल पर विश्राम करते। निशानेबाज खूंखार सरहदी डाकुओं का बड़ा भय था। मुझे याद है बन्नू की राह की किसी सराय में घोड़ों की लदी भरी कोठरी में सोना। मुझे मजे में याद है कि शौच के लिए पहाड़ियों में जाने पर किसी महाभयानक पठान को देखते ही बिना निपटे ही भाग आना। मुझे बतलाया गया था कि सरहदी बदमाश लड़कों को खास तौर पर पकड़ ले जाते हैं। बन्नू पहुंचने पर भी शहर देखने घूमने फिरने बड़े लोग ही जा पाते थे। हम लड़कों को तो उसी अहाते में बंद रखे जाते और रात को फाटक बंद कर केवल 100-200 हिंदुओं की उपस्थिति में रामलीला दिखाई जाती थी। बन्नू के भक्तों से विदाई में दक्षिणा भारी मिलने वाली थी, इसलिए विशेषतः महंत भागवत दास पैसा पकड़ मंडली लेकर वहाँ गए थे, लौटे भी अच्छी रकम बनाकर, रुपए, पशम, ऊन, काठ का सामान, चांदी के पात्र, सोने के आभूषण। पृष्ठ संख्या 63। बन्नू हम गए थे कोटाह की तरफ से, लौटे डेरा गांजी खा की तरफ से। मेरे बड़े भाई जैसे हजरत छिपे छिपे फुसफुसाते कि महंत बटुक विलासी हैं। इसका कारण यह था कि स्वयं 4:30 बजे सवेरे स्नान करने के बाद महंत जी उनके लड़कों को भी उसी वक्त नहलवाते थे जो स्वरूप राम लक्ष्मण सीता बना करते थे। सर्दी के दिनों स्नान के बाद शीत से कांपते उन किशोरों को प्रायः नियम से महंत जी अपनी कोमल इटालियन कंबल में बुला लिया करते थे। एक दो तीन को उनके गाल हथेलियों से रगड़ रगड़ कर गरमाया करते थे। मेरे मते यह क्रोधी कठोर स्वभाव भी महंत का महज निर्विकार कोमल पक्ष था। महंत भागवत दास सिद्धांत और लंगोट के सच्चे थे। बन्नू में अनेक सरहदी सौगात संग्रह करने के कारण बड़े भाई और मैं इसके बाद घर यानी चुनार लौट आए। हमारे आग्रह करने पर भी माता के लिए भी मझले साहब ने मंडली छोड़कर चुनार आना स्वीकार नहीं किया।